एक बात ये मालूम करनी थी कि हमारे लिए इज्तिमा में हर साल ये मजलिस होती है, असरी तलबा की, स्टूडेंट्स की हर साल ये मजलिस होती है। आप हजरात इससे पहले इस मजलिस में शरीक हुए हो? कौन कौन आप में से शरीक हुआ, हजरात उठाओ। माशाल्लाह, अक्सर मजमा शरीक हुआ है। हर साल आप हजरात को मुस्तकिल यहाँ जोड़ते हैं और आपसे कुछ बातों का कहना सुनना होता है। आप साथियों के जहनों में तो बात आ गई होती है कि माशाल्लाह आप पिछले दिनों में भी इस मजलिस में शरीक होते रहे हो। यहाँ जो आप हजरात को स्पेशल बुलाया जाता है, पिंडाल से हटकर खाली दीन की बात सुनने सुनाने के लिए नहीं, दीन की बात तो पिंडाल में भी अभी हो रही है। अगर खाली दिन की बात सुनानी होती तो आपको क्या कहते कि वहीं बैठकर बात सुन लो? बोला ऐसा कहते नहीं कहते, वहाँ बात हो रही है उसके बाद भी आपको अलग से बुलाया और आपसे कुछ बातें करते हैं। आपने सोचा कि क्यों आपको अलग से बुलाते हैं और आपसे क्यों अलग से बातें करते हैं? आपने गौर किया इस पर? नहीं किया। अच्छा, गौर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। असल बुनियादी बात यह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन में खैरख्वाही है। क्या है बोलो, किसके लिए? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे दीन में खैरख्वाही है इस उम्मत के सारे लोगों के लिए, छोटे बड़े, शहरी है, देहाती, पढ़े लिखे, अनपढ़, सारे तबकों के लिए खैरख्वाही है। नबी क्या खैरख्वाही करते थे? नबी खैरख्वाही ये करते थे कि इस उम्मत को ऐसा जीना मिल जाए, इस उम्मत के हर तबके को ऐसा जीना मिल जाए जिस जीने से इनके दुनिया भी अच्छी हो जाए और इनके मरने के बाद की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? जी भाई, कि हम जब तक जिए हमारा जीना अच्छा हो जाए और जब हम मरें तो हमारा मरना का मरना भी अच्छा हो जाए। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इन दोनों चीज़ों की बुनियाद जो है, दुनिया का अच्छा होना और आखिरत का अच्छा होना, किसी की सोच, किसी की फिक्र, किसी की मेहनत पर ये चीज़ मौकूफ़ नहीं। अल्लाह ने उसके लिए एक दस्तूर बनाया है, एक कानून बनाया है। जो आदमी उसके मुताबिक हो जाए, वो जिस शोबे में भी हो, अल्लाह उसकी दुनिया भी अच्छी करते हैं और आखिरत भी अच्छी करते हैं। और दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे मक्के मदीने का हो, चाहे मक्का, और उस लाइन से हट जाएगा तो अल्लाह उसकी दुनिया भी ख़राब करेंगे और उसके अल्लाह आखिरत भी ख़राब करेंगे। ये उसूल अल्लाह ने कुछ जाब्ते बनाए हैं और उसके वाकयात हैं। बिलाल हबशी हबशा के आदमी थे, लेकिन उस लाइन पर पूरे उतरे तो अल्लाह ने दुनिया में इतनी इज्जत दी, ओहो, इतनी इज्जत दी, ऐसी इज्जत किसी को नहीं मिली। काले कलोटे हबशी आदमी थे, चपटे नाक वाले थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में उनको बड़ी इज्जत मिली। अल्लाह ने इज्जत दी, क्यों? वो लाइन पर पूरे उतरे, उस कानून पर पूरे उतरे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का ज़माना था तो आते तो हज़रत उमर ये फरमाते, या सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गए। हालांकि वो ग़ुलामी में से आज़ाद हुए थे, तो क्या फरमाते थे? हमारे सरदार बिलाल आ गए। अल्लाह ने इतनी इज्जत उनको दी। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जब अल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएंगे तो मेरी ऊँटनी की सवारी, जो मेरी ऊँटनी जो सवारी होगी उसकी नकेल किसके हाथ में होगी? अरे बोला, किसके हाथ में होगी? कितनी बड़ी इज्जत हो, हजूर के उठने की नकेल उनके हाथ में हो गई। तो दुनिया में सरदार बन गए, यूँ कहते थे, ओ सरदार, हमारे सरदार बिलाल ऐसा। और मरने के बाद कि हजूर ने खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह इतनी इज्जत देंगे। हजूर के सगे चचा एक थे, उसका नाम था अबू लहब, वो सगा चचा और कुरैशी आदमी था, बहुत गोरा चिट्टा आदमी था, खूबसूरत आदमी था और हट्टा कट्टा आदमी था, और मक्के का चौधरी था। मक्के का क्या था बोलो? मक्के का चौधरी, हराम, मस्जिद हराम का मुतवल्ली। हाँ, उसका राजपाट चलता था मक्के में। मक्के में वो जिसको दाखिल होने थे वो दाखिल होता था। ऐसा वजनदार आदमी और सगा चचा हुज़ूर का। लेकिन उसने वो बातें पूरी नहीं की जिस पर अल्लाह दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाते हैं, वो बातें उसने पूरी नहीं, उस पर वो पूरा नहीं उतरा। तो अल्लाह की निगाह में इतना गिरा, इतना गिरा कि अल्लाह ने उसको ऐसे निकाल कर फेंक दिया जैसे दूध में से मक्खी निकल कर फेंक दिया, ऐसे निकल दिया। उसकी बर्बादी की आयत अल्लाह ने कुरान में उतार दी, कि हम इसको दुनिया में भी बर्बाद करेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि बर्बादी हो अबू लहब के लिए, ऐसे आयतें अल्लाह ने उतारे कुरान में। अल्लाह ने उसके तहस नहस कर दिया। हाँ, बहुत बुरी मौत मरा वो, बहुत बुरी मौत मरा। जब वो मरा तो उसका जिस्म बिगड़ गया था, उसकी कोई लाश उठाने वाला नहीं था। तो उसके बच्चों को लोगों ने कहा कि तुम्हारे बाप की लाश पड़ी है, उठाओ इसको। तो गड्ढा खोदा और लकड़ी से धक्के मार मार कर उसको अंदर गिरा दिया। कि इतना बड़ा चौधरी मक्के का मुतवल्ली, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने उसको जलील किया, और मरने के बाद जिल्लत की बात कर दी कि मरने के बाद भी वो जलील होगा। तो ये उसूल है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ये खैरखाही की बात लेकर आए कि उम्मत के जितने तबके हैं उन सारे तबकों को ये बातें समझाई जाए, ताकि जब तक ये जिए इनका जीना अच्छा हो जाए, और जब ये मरे तो इनका मरना अच्छा हो जाए। तो आप देखो, तबलीग की मेहनत जो है ना, वो नबियों वाली मेहनत है। कौन सी मेहनत बोलो? तो इस मेहनत में जब नबी दुनिया में थे तो लोगों के पास जा जा कर ये बात करते थे, हर तबके के पास जाते थे। अब नबी नहीं है तो नबी की मेहनत करने वाले लोग लोगों के पास जाते हैं। आप भी नबी का काम करने वाले हो, हम भी नबी का काम करने वाले हैं। तो कभी औरतों में बात करते हैं, कभी मर्दों में, कभी फला में फला में, अलग अलग तबकों में बात होती है। जैसे और सारे तबकों में बात करते हैं, ऐसा एक तबका असरी तलबा का है। कौन से तलबा बोलो? एक मदरसे के तलबा और एक असरी वालों माने स्टूडेंट्स, एक इनका तबका है। तो ये तबका भी हमारा बहुत बड़ा अहम तबका होता है। जो आप लोग हो वो बहुत अहम तबका होता है। कैसे अहम होता है? कि आप लोगों को पता नहीं है कि आप अहम हो कि नहीं हो, आपको नहीं पता है। आप तो अपने आप को क्या समझते हो? हम तो कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई कॉलेज पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। और छिल्ला हेतु कितना है कि इंजीनियर हो जाऊंगा तो अपने जॉब करूंगा, डॉक्टर हो जाऊंगा, दवाखाना खोलूंगा, वकील बन जाऊंगा तो वकालत करूंगा। इससे आगे का कोई हेतु नहीं है। बोलो, इससे आगे का कोई हेतु है किसी का? हर एक का हदफ ये होता है कि भाई मैं अच्छी पढ़ लूँ, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सर्विस मिल जाए और मैं वो काम शुरू कर दूँ। बोलो, यही होता है? उसके आगे और कुछ होता है? अरे बोलो तो सही। हर एक पढ़ाई के ज़माने में मेरे अच्छे से अच्छा स्कोप मुझे कौन सा मिल सकता है वो ढूंढता है। पढ़ाई के बाद मुझे अच्छे से अच्छी जॉब मिल जाए उसको ढूंढता है। बोलो, यही होता है? उसके अलावा और कुछ होता है? यही होता है। तो आप हजरत के जहनों में तो इतनी बात है, लेकिन सही बात बताऊं, प्रजा आपको इस जहन से नहीं देखती, प्रजा आपको इससे ऊपर की निगाह से देखती है। प्रजा किस निगाह से देखती है? पब्लिक जो होती है वो ये समझती है कि अभी ये हमारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे कौन है? का हमारे भविष्य के वडील है, ये बड़े बनेंगे हमारे मुस्तकबिल में, ये बच्चे उम्मत के रहबर और पेशवा बनेंगे। लोग तुमको इस निगाह से देखते हैं। अभी देखो, अभी समाज में जो इस नौयत के लोग होते हैं, लोग अपने मसाइल उनके पास लेकर जाते हैं। बोलो, होता है नहीं होता? उनकी राय लेते हैं, उनके मशवरे लेते हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग होते हैं, उम्र में छोटे होते हैं लेकिन मर्तबे में बड़े होते हैं। मर्तबे में कैसे होते हैं बोलो? हाँ, अभी जो बड़े हैं वो कल ख़त्म हो जाएंगे। बड़ों की मौत छोटों को बड़ा बना देती है, बड़ों की मौत छोटों को बड़ा बना देती है। जो समाज के लोग हैं वो आपको बच्चे समझ कर नहीं देखते। वो कैसे देखते हैं? कि आज के बच्चे हैं लेकिन कल के बच्चे नहीं। आज का छोड़ कल का झाड़, आज का छोड़ बोलो, आज का फेरिया कल का व्यापारी, आज का फेरिया कल का, हाँ, आज की कली कल का फूल। वो आज कली है, जिंदगी भर कली नहीं रहेगी, वो कल क्या बन जाएगा? आज का फेरिया फेरिया है, कल क्या बन जाएगा? वो का कल का कल की कल का व्यापारी बन जाएगा। तो आप हजरत भी जो हो वो समाज को लेकर चलने वाले लोगों में से बनोगे। व्यापारी वर्ग होता है वो व्यापारी वर्ग बावजन होता है। ऐसे पढ़े लिखे हजरत कौम और समाज के अच्छे बड़े बनते हैं। कौम और समाज के क्या बनते हैं? बड़े बनते हैं। कौम और समाज के आपको अल्लाह बड़ा बनता है। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उम्मत का दिमाग होते हैं। कौन होते हैं बोलो? उम्मत का दिमाग होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे बच्चे बचपने में होते हैं, किसमें होते हैं? बचपने में। इतनी बड़ी बात इनको समझ में आई हुई नहीं होती। आपको भी अभी मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं जो कह रहा हूँ आप कहोगे मौलाना तुम यार ऐसी ऐसी उल्टी सुलटी बातें करते हो ना, आपको भी अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन वक्त आपको बताएगा, वक्त आपको बताएगा। आप इंशाल्लाह बड़े बनोगे, अल्लाह आपको इज्जत देगा और लोगों को आप लेकर चलोगे। हम तो देखते हैं इलाकों में चलते हैं फिरते हैं तो गाँव के मुखिया होते हैं, गाँव के चौधरी होते हैं, वो ऐसे सूझबूझ वाले लोग होते हैं।
सूझबूझ वाले लोग। हाँ तो आप हजरत अभी बच्चे हो, लेकिन अल्लाह पाक आपको ये सब चीज़ें देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह आपको दुनिया में बड़ा बनाएगा। ये आप हजरत को जो हम लेकर बैठते हैं वो इसीलिए क्योंकि ये हमारी उम्र छोटी छोटी होती है, बचपने की उम्र है। इस बचपने की उम्र में इन बातों की समझ नहीं होती कि ऐसा भी होने वाला है, इसको सोचते भी नहीं है और अपने घड़तर में कमी रख देते हैं। हम क्या कर देते हैं बोलो? हमारी तालीम के साथ दो जुमले एक साथ चलते हैं, भणतर और बोलो, भणतर और घड़तर, तालीम और तरबियत, तालीम और तरबियत। ये पहले से दो चीजें साथ साथ चलती है, तालीम और तरबियत, भणतर और बोलो घड़तर। अगर किसी का भणतर हो गया या घड़तर नहीं हुआ तो फिर लोग क्या कहते हैं? भणे अपन गणया नहीं, भणे अपन बोलो गणया नहीं। क्या मतलब? कि भणतर के बाद भी तोछड़े का तोछड़ा रहा, नहीं इसे बोलना आता है, नहीं उसे बैठना आता है, नहीं इसे बात करना आता है, ये जानवरों की तरह रहता है। क्या हुआ ये? ऐसा घड़तर सही नहीं हुआ। तालीम तो क्या करती है? तालीम तो घड़तर करती है, सारा संस्कार आता है। बोलो क्या आता है? उससे सारे अच्छे संस्कार मिलते हैं। ये भणतर से, तालीम से आदमी आदमी बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? मानस मानस बनी जाए, मानसा ही आ जाए। बोलो क्या आ जाती है उसके अंदर? मानसा ही आ जाए। अब जिस आदमी के घड़तर नहीं होती, घड़तर नहीं होती तो उसके अंदर से मानसा ही निकल जाती है। क्या निकल जाती है? मानसा ही। देखो बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं ना, वो बहुत अच्छे ऑफिसर बन गए, लेकिन उनके अंदर जानवरों की हरकत होगी। किसी का कुछ ले लेंगे, लारी वाले का लारी का जो खा लेंगे, रिक्शे वाले के 10 रुपये ले लेंगे, उसको सबको डैमेज करते जाते हैं। तुमने देखा क्या? वो बड़ा ऑफिसर बन गया लेकिन मानसा ही खत्म हो गई। हाँ कुछ डॉक्टर होते हैं, उनके अंदर से मानसा ही निकल जाती है। वो है डॉक्टर लेकिन उसके अंदर से क्या निकल गई? मानसा ही निकल गई। वो मुर्दों के साथ भी खेल खेल लेते हैं, वो गरीबों के साथ भी चिटिंग कर डालते हैं। आपने देखा होगा कि क्या हुआ? मानसा ही निकल गया। मानस है पर मानसा ही नहीं, कि मानसा उसके निकल गई। तो ऐसे लोगों को समाज और कौम अच्छी निगाह से नहीं देखती, बल्कि वो लोग जिंदगी भर लोगों की बद्दुआ के साये तले होते हैं। किसके साये तले? बहुत सारे लोग होते हैं उनको जिंदगी भर लोग बद्दुआ देते हैं, जिंदगी भर। एक मजमे को जिंदगी भर दुआ देते हैं और एक मजमा वो होता है जिनको जिंदगी भर लोग क्या देते हैं बोलो? एक को दुआ देते हैं और एक को बद्दुआ देते हैं। एक मजमा ऐसा होता है। तो वो कौन है? जिन्होंने तालीम तो ली लेकिन इनका घड़तर अच्छा नहीं हुआ। तो ये बड़े बने लेकिन बुरे बड़े बने। कैसे बड़े बने बोलो? बुरे बड़े बने। इस मेहनत के रास्ते से आप हजरत की ये बात सोची जाती है कि आप बड़े बनो लेकिन बुरे बड़े ना बनो। कैसे बड़े बनो बोलो? अच्छे बड़े बनो। हजारों लोगों की आपको दुआएं मिले, हजारों लोगों का आपको साथ मिल जाए। इसके लिए ये तबलीग की मेहनत स्टूडेंट्स में की जाती है। ये मेहनत किसको करनी थी? कि ये मेहनत, इसकी जागृति खुद स्टूडेंट्स के अंदर आनी चाहिए। भाई एक आदमी कोई रास्ते पर जाता है ना, तो उस रास्ते को पहले पूछता है, मुझे बम्बे जाना है, कैसे जाऊंगा, कौन सी ट्रेन है, कैसे बैठना चाहिए, सब समझकर खुद उसको करता है। तो इतनी बड़ी जिंदगी का रास्ता हम चल रहे हैं, तो मेरे जिम्मे था कि मैं इस रास्ते को अच्छी तरह समझ लेता, मुझे कैसे इसमें चलना है। लेकिन चूंकि इस बातों का रिवाज हमारे माहौल में नहीं है, तो रास्ता चलने वालों को पता नहीं होता कि मुझे इस रास्ते को कैसे चलना है। फिर क्या होता है? इस रास्ते में आदमी चलते चलते बहुत ऐसी हरकतें कर बैठता है जो इसको नहीं करनी थी। वो बेचारा क्या समझता है? मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, मेरे पढ़ाई का ज़माना है। और वो ज़िंदगी में ऐसी हरकतें कर बैठता है जो इसे नहीं करनी थी। वो क्या समझता है कि क्या बात है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ईमान वाले स्टूडेंट्स में और गैर ईमान वाले स्टूडेंट्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ईमान वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 15 साल की उम्र के बाद, बालिग होने के बाद, उनकी हर बात फरिश्ते नोट करते हैं। क्या करते हैं बोला? फरिश्ते नोट करते हैं। क्यों मन खाते भी नहीं, फरिश्ते हर बात उनके नोट करते हैं। अगर अच्छी है तो उनके खाते में अच्छा ही आती है। और खुदा न करे वो बच्चा अपनी इस जिंदगी में आज़ाद हो गया और कोई हरकत ऐसी कर रहा है, तो वो भी नोट हो रही है। अब क्या होगा? अब ये बच्चे को तो किसी ने बातें समझे ही नहीं, को भाई तू जो कर रहा है तेरा सब नोट हो रहा है। और नोट हो रहा है का मतलब, नोट हो रहा है का मतलब, अगर तेरा अच्छा है तो तुझे तेरे अच्छाई का बदला मिलेगा, और तेरे साथ ये बुराइयां लग रही है और तू बुराइयां कर रहा है, तुझे तेरी बुराई का बदला भुगतना पड़ेगा। अब ये बच्चे को बच्चे की उम्र में समझ में नहीं आता होता, वो जवानी में जुनून में होता है। عربی میں کہاوت ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. جوانی کیا ہوتی ہے بولو؟ الشباب شعبت من الجنون. جوانی دیوانی ہوتی ہے, پاگل پنا ہوتا ہے. جیسے پاگل آدمی کچھ بھی دنیا میں کر لیتا ہے, ایسے جوان آدمی دنیا میں کچھ بھی کر لیتا ہے. جوان آدمی دنیا میں کیا کرتا ہے بولو؟ کچھ بھی. اس کو 500 لوگ نصیحت کرتے ہیں, ماں باپ روز نصیحت کرتے ہیں. بولو صحیح بتاؤ, ماں باپ روز سمجھاتے نہیں سمجھاتے؟ لیکن یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں پاگل پنا سوار ہو جاتا ہے, جنون سوار ہو جاتا ہے. وہ کس سے متاثر ہے؟ دوستوں کے سرکل سے متاثر ہوتا ہے, ماحول سے متاثر ہوتا ہے, حالات سے متاثر ہوتا ہے, اور اپنا پورا کلچر بدل دیتا ہے. اب دیکھو جوان, وہ جوان جو جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی. کیسے ہوتے ہیں بولو؟ ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی, جیسا دیس ویسا بھیس. ایسی طبیعتیں بن جاتی ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی میں باتیں ہیں, اللہ کا فضل ہے, سب جگہ چلتے ہیں پھرتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, وچار دھارا بدل جاتی ہے, آہستہ آہستہ سوچ بدل جاتی ہے. ہاں, وچار دھارا, سوچ, اور اپنی رہن سہن کو بدل دیتے ہیں. ہاں, عجیب و غریب. ہم لوگ ابھی ایک جگہ پر تھے ویسٹ انڈیز میں, تو ایک ہفتے کے لیے ہم لوگ گئے تھے, تو ہم کو مسلمان ملے. ہمارا نا یہاں تو ایشین ہندوستانی ہے, مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی. تو وہ جیسے حج میں جاتے تھے, نہیں کہتے میرا عرفاتی بھائی ہے, ہوتا ہے نا, کہتے ہیں یہ تو میرا عرفاتی بھائی ہے, تو آپس میں دعا سلام شروع کر دیتے ہیں اور پردہ بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا کہتے ہیں یہ تو ہماری ہندوستانی بھائی بہن ہے. تو مسلمان لڑکیاں اس کو غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں, اور مسلمان لڑکے غیروں کے ساتھ, اور زندگی بھر ایسے کیسے رہ رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ جیسا دیس ویسا بھیس کا روپ ان پر سوار ہو گیا. اب زندگی بھر جس کے ساتھ اللہ نے نکاح حرام کیا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں ماڈرن کلچر ہے. کون سا کلچر بولا؟ ماڈرن کلچر. تو ٹیم کی ٹیم اس میں, اس لاوے میں بہہ جاتی ہے, ٹیم کی ٹیم, کھیپ کی کھیپ. ہاں, ہم ایک ملک میں گئے تو بارباڈوس, تو وہاں بچے آئے کہ یہاں ایشین 15 بچے ہیں لیکن ہم کرسچنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. کیا ہوا کہ جیسا دیس ویسا بھیس ان پر غالب آ گیا. اب اس معاشرے, گندے معاشرے کے ساتھ پھر وہ واپس یہاں لوٹ کر آتے ہیں. تو یہ گھڑتر نہیں ہوتا تو یہ جراثیم طبیعتوں پر لگ جاتے ہیں, زندگیوں میں لگ جاتے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین یہاں کہ ہے نا, ڈاکٹر محمد حسین جانتے ہو آپ لوگ؟ وہ مجھے گزشتہ کہنے لگے کہ ہم ودیا نگر میں بڑھتے تھے تو یہ اس طرح کی ہمارے وہاں تو محنت نہیں تھی, کوئی کسی کا رنی دھنی نہیں, کوئی پرسہ نہال نہیں. تو رمضان کا مہینہ تھا, ہم لوگ وہاں پہنچے تو دوپہر کے بعد اسٹوڈنٹس کو ہم نے جوڑا تھا. ودیا نگر میں زہر کے بعد بچے جوڑتے تھے, زہر کے بعد آتے تھے, پھر عصر مغرب میں ان کا پروگرام ہوتا تھا. تو ایک بچی وہاں بیکری کا سامان لے کر آئے لینے کے لیے, تو ایک آدمی نے بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان کی بچی, اتنا فراک پہنا ہے اور اتنا کپڑے نیچے کے پہنے, یہ مسلمان کی بچی ہے, رمضان کے مہینے کھانے لینے آئی ہے. اور کہنے لگے کہ جب یہ آئی تھی تو برقعے میں آئی تھی. کس میں آئی تھی بولو؟ برقعے میں. اور ابھی اس پوزیشن میں ہے. کیا ہوا کہ جیسا دیس بھی ویسا بھیس ہو گیا, کہ جس کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک اور جس طرح کا رہن سہن ہوا کہ یہ ضائع ہو گیا. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا یہ چیز کتنی ہمیں نقصان دہ ہوگی. اور ایک جگہ پر نہیں ہو رہا, یہ جراثیم عام ہوتے جاتے ہیں. تو ہمارے بچے ان ساری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں اور ان جراثیم سے بچتے ہوئے یہ پروان چڑھیں, تاکہ یہ اچھے بڑے بنے. کیسے اچھے, کیسے بڑے بنے بولو؟ یہ اچھے بڑے بنے. اس کے لیے آپ حضرات کو یہ جوڑا جاتا ہے اور کچھ باتیں آپ سے کہی جاتی ہے, تاکہ وہ باتیں وہ نہیں ہوتی خالی سرسری کرنے کی, کہ وہ باتیں وہ ہے جس سے اس ماحول میں تمہاری حفاظت ہو جائے. اس ماحول میں تمہارے کیا ہو جائے بولو؟ آپ حضرات کی حفاظت ہو جائے. پہلے تو حق یہ تھا کہ یہ خود آپ تیاری کر کے اس تالاب میں اترو. یہ جو گندی فضائیں ہیں ماحول دنیا کا, اس بھائی آدمی سمندر میں اترتا ہے تو تیرنا سیکھ کر اترتا ہے کہ بھائی مجھے تیرنا سیکھ کر اترنا ہے. آدمی سانپ پکڑتا ہے تو سانپ کو پکڑنا سیکھ کر سانپ پکڑتا ہے کہ میں پکڑنے جاؤں کہیں مجھے کاٹ نہ لے. تو جس دنیا میں ہمیں رہنا ہے, جس معاشرے میں ہمیں رہنا ہے, اس معاشرے میں رہنے کو سیکھ کر پھر اس معاشرے میں جاؤں. لیکن اکثر یہ نہیں سیکھ پاتے تو پھر وہ ان پر اثر کرتا ہے, وہ چیزیں ان پر, پانی ان کو ڈھو لیتا ہے. پانی کیا کرتا ہے بولو؟ ان کو ڈھو لیتا ہے اور وہ بےچارے ڈوب جاتے ہیں. اور ایک دو نہیں, ٹیم کی ٹیم ہاتھ سے چلی جاتی ہے, ٹیم کی ٹیم. ابھی ہم لوگ جے پور گئے تھے, وہاں ایک میڈیکل کالج ہے, ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں. تو ایک پیٹ سملواڑا کا طالب علم آیا, کہنے لگے کہ ہم یہاں 35 ہے 35, میں بھی ایم بی بی ایس کر رہا ہوں. اس نے کہا لیکن مل صاحب میں ان کو جمع کر لوں. میں نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ روزے بھی نہیں رکھتے اور اتنے گندے گناہوں میں مشغول ہے کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. مسلمان لڑکے, مسلمان لڑکیاں کھیپ کی کھیپ ہاتھ سے چلی جاتی ہے. پھر نتیجے میں انہیں گندی عادتوں کے ساتھ زندگیاں پروان چڑھ جاتی ہے. اب ان میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, انہیں وہ ماحول نہ گھر میں ملا, نہ محلے میں ملا, نہ ان کو اپنے آپس میں ایسا ماحول ملا. تو ہمارے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک بھی بچہ ضائع ہو اس پر ہم راضی نہیں ہیں. ہمارے بچے ضائع ہو اس پر کوئی راضی نہیں. हमारे बच्चे ज़ाये होने से बच जाएं, इसके लिए आप हजरत की ये स्पेशल मेहनत होती है। ये आगे जाकर हमारे मुस्तकबिल के बड़े बनने वाले हैं, अगर ये अच्छे बड़े बने तो ये उम्मत के लिए खैरखा बनेंगे और उम्मत के भले लोग इन उम्मत में उम्मत के हमदर्द बनकर बड़े बनेंगे। और खुदा ना करे अगर इनकी ये चीज़ कमज़ोर पड़ गई तो ये बच्चे बड़े तो बनेंगे लेकिन पता नहीं कितनों को ले डूबेंगे, पता नहीं कितनों को ले डूबेंगे, कैसे ले डूबेंगे। ये मिसाल के तौर पर मैं एक स्कूल का उस्ताद बन गया, मुझे स्कूल पढ़ाने की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे आई। मेरे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, मेरे अंदर अल्लाह का डर नहीं है, बच्चे मेरे पास अमानत है, ये मैंने चीज़ नहीं समझी। तब मैं अपने बच्चों के साथ कैसा खेल खेलूंगा अपने भी अपने स्कूलों में देखा होगा। हम स्कूल पढ़ते थे तो हमारी जो प्रिंसिपल थी हमने उसको देखा, हमारी हेडमास्टर जो थी वो हमने उसको देखा, रोज़ाना घर से वो ऊन और सोई दौरा लेकर आवे, बैठे बैठे कांपती रहे पूरा पीरियड पूरा हो जावे, हमें जो कर रहे हैं करें, ना कर रहे हैं कोई बात नहीं। और तुम देखो गांवों के स्कूलों के हालात, ये खयान, हज़ारों बच्चों के साथ उनके भाभी के साथ खेल खेला जाता है कि मैं 25 साल में नौकरी पर चढ़ गया, 60 साल में रिटायर्ड होऊंगा। अब मैंने इन बच्चों को अपनी अमानत नहीं समझा कि बच्चे मेरे पास अमानत है, मैं इसका पगार लेता हूँ। बच्चों मैंने तो ये समझा कि मुझे 2-4 घंटे इस स्कूल में गुजारने हैं, वो कैसे बच्चों को पढ़ना हो तो पढ़े, ना पढ़ना हो तो ना पढ़े। अब मैंने पढ़ाने पर ताकत नहीं लगाई, इनको इनकी तरबियत पर मैंने अपना जी जान नहीं लगाया, बच्चों को टाइम पास मैंने करवा दिया, छुट्टी दे दी। अब वो पढ़े तो अपने फिक्र से, ना पढ़े तो अपनी बला से, हमें क्या जाना। अब मैं इस तरह के अपना वक्त गुजार रहा हूँ स्कूल में, जब तक मैं स्कूल में रहूँगा इन बच्चों के भाभी के साथ मैं खेल खेलूँगा। बोलो होगा नहीं होगा ऐसा। और अगर मेरे ऊपर मेहनत हो गई और मुझे बात समझाई गई कि नहीं ये बच्चे ये तुम्हारे पास अमानत है, चाहे कौन से भी बरादरी के हैं, तुम्हारे पास अमानत है और ये वक्त तुम जो पैसे लेते हो ये इसके बदले में ये वक्त आपने बच्चों के लिए फारिग किया है, आप अपनी पूरी ताकत इन बच्चों पर लगाओ, तो फिर वो ऐसा पढ़ाने वाले की पढ़ाने की तरतीब अलग होगी कि वो वक्त पर आएगा, वक्त पर जाएगा। और जो पढ़ाने का वक्त बच्चों के लिए फारिग किया है ना, उसमें जी जान से बच्चों पर मेहनत करेगा। हमने देखा है अपने बचपन में ट्यूशन कोई बच्चा नहीं जाता था, स्कूल में ऐसी शानदार मेहनत हो जाती थी, ट्यूशन कोई बच्चा नहीं जाता था। और हम लोग 92 में थे SSC में, तो उस ज़माने में फसादात हो गए, फसादात हिंदुस्तान में बड़े फसादात हो गए थे, तो स्कूलों में 6-6 महीने तक बंद हो गए स्कूल, फसादात हो गए थे, तो फसादात हुए तो स्कूलें बंद हो गए, हम भी SSC में थे। तो अब उस लाइन के ट्यूशन, भाई ये बच्चों की मुसलमान बच्चों के ट्यूशन का क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं चालू करवाए भाई इसका ट्यूशन ये दे दें, तो ट्यूशन में बच्चे ऐप समझते थे, तो जो ट्यूशन जावे ना तो पूरे स्कूल के बच्चे कहते थे ये तो डोबा छोकरा है, कैसा छोकरा है, ये तो गभी डोबा छोकरा है। वो छुप कर जाता था और कभी किसी को कह रहे भी नहीं कि मैं इस सब्जेक्ट का ट्यूशन लेता हूँ, क्यों, कि डोबा छोकरा है, इसको तो आता नहीं इसलिए ट्यूशन देना पड़ रहा है। ऐसा माहौल था कि स्कूल में बच्चों को इतनी इतनी तैयारी करवा दी जाती थी, हमें जहाँ तक मुझे याद है उस्ताद पढ़ाते थे, हम पढ़ लेते थे, बात पूरी हो जाती थी, वो इतनी अमानतदारी से पढ़ाया जाता था कि पूरा चैप्टर समझा जाता था। और ट्यूशन जाना ऐब की चीज़ हो गई, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दी जा रही है, तो हज़ारों बच्चों की हज़ारों चीज़ें लग रही है, खयानत वजूद में आ जाती है, खयानत। जो चीज़ दूसरे करेंगे वही हमारा मुसलमान माशरे का आदमी भी ये चीज़ करता है। ये तो एक शोबा हुआ, ऐसे ज़िंदगी के सारे शोबों में, मैं मान लो कि कोई एक आदमी डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर बनने के बाद वो बच्चे उसकी तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उसके पास हर आदमी अपने राज को रख देगा, अपनी कमज़ोरियों को उनके साथ रख देगा, अपनी कमज़ोरी उनके साथ रखेगा, अपने अपने अंदर की सारी चीज़ें रखेगा। अगर वो अमानतदार नहीं है तो वो आने वालों को पता नहीं कैसे कैसे निगाहों से देखेगा। अगर उसके अंदर अल्लाह का डर है तो आने वाली लड़की को अपनी बेटी समझेगा, आने वाली उम्र रसीदा बहन को अपनी बहन समझेगा, गलत निगाह से नहीं देखेगा। हम डॉक्टरों से मिलने गए तो डॉक्टर एक मुझे कहने लगे, MBBS डॉक्टर है, मोहम्मद है सफ़ेद बाल वाले, कि हमारे डॉक्टर बिरादरी में बहुत गुनाह हैं, बहुत गंदगियाँ हैं, बहुत खुराफात है। ये कैसे हुआ कि बचपन के ज़माने में जो चीज़ इन्हें समझनी थी वो नहीं समझी, अब ये उम्र में पहुँचे अपनी अच्छी उम्र में तो अभी वो बुराइयाँ जिंदगी से इनकी नहीं गई है, कि घड़तर नहीं हुआ है। हमारे बच्चे इन जरासीम में मुबतला ना हो जाए और इनका घड़तर अच्छे से अच्छा हो जाए, इसलिए आप हजरात को यहाँ जमा करके उन आमाल पर पढ़ते हुए, पढ़ने को कहते हैं जिन आमाल पर पढ़ना तुम्हारी हिफाजत का जरिया हो जाता है। उन आमाल में क्या 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 चीज़ें हैं, क्या सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारे एक एक बच्चे में इस पढ़ाई के दरमियान में इसका जहन रहे, इसका इस्तेहज़ार रहे कि हम अल्लाह की निगरानी में हैं। हम किसकी निगरानी में, बोलो, हाँ, कहीं किसी जगह पर लिखा हुआ होता है क्या कि तुम्हें कैमरा नहीं कैद माँ छो नजर माँ छो, आदमी चौकन्ना हो जाता है, ओहो हम कैमरे में हैं, तो कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि जो हमको बुरा हम कसूर में आ जाए। हमारे एक एक पढ़ने वाले तालिबे इल्म के जहन में ये बात आ जाए, हम इस कॉलेज और स्कूल के माहौल में आज़ाद नहीं हैं, हम अल्लाह की निगाहों में हैं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अगर हमारे बच्चों के जहन में बात आ गई तो इनसे करने का काम कोई छोड़ेगा नहीं, और न करने की कोई काम करने की वो हिम्मत नहीं करेगा। उसके जहन में बात आ जाए मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। दूसरा, हमारे एक बच्चे के जहन में बात आ जाए हम जो कुछ करेंगे उसका बदला हमें भुगतना है, हमारी अच्छाई का भी बदला भुगतना है और हमारी बुराई का भी बदला। अगर ये जहनों में बात हमारे बच्चों के बैठ गई ना, तो फिर ये करने के काम करेंगे और न करने के कामों से डरेंगे। ओहो, इसका मुझे बदला भुगतना पड़ेगा, मुझे इसका बदला भुगतना पड़ेगा। दुनिया में कोई होता है ना, दुनिया में तो देखता है एक मुझसे, भाई ये रेड लाइट हो गई है तो रेड लाइट पर मैं चला जाऊँगा, मुझे फाइन लगेगी और मुझ पर दंड लगेगा। ये जब जहन में होता है, कितनी भी तेज स्पीड का आदमी होता है एकदम स्टॉप करता है कि कैमरे लगे हुए हैं, फट देकर कैमरे में आ जाऊंगा। सऊदीया में जो है ना, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, जरा भी तुमने क्रॉस किया एकदम वाउचर घर आ जाता है। तो कितनी भी स्पीड का आदमी होता है एकदम स्टॉप कर लेता है। और पूरे यूरोप में देखो, हम लोग यूरोप में गए, हमने यूरोप में देखा कि वहाँ भी कोई पुलिस वाले नहीं, एकदम लाल लाइट लगी है तो एकदम बस रुक जाएंगे। क्या बात हो गई कि पता है कि इसका अंजाम क्या होगा। सहाबा को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बात समझाई थी, हमारे अच्छे कामों का अंजाम क्या होगा, हमारे बुरे कामों का अंजाम। इसको इतना समझाया था कि तन्हाई में भी कोई आदमी गलत नहीं करता था। एक सहाबी को एक बादशाह ने कैद कर लिया और ये चाहा कि इसको किसी तरह अपने पास रोक लें, तो उसको हुक्म ये दिया कि तू हमारी बात मान ले, तुझे अपनी बेटी से निकाह करवा दूंगा, और लेकिन तू अपनी नसरानियत पर आ जा, नसरानियत पर। फिर कहा कि मैं तुझे आधा राजपाट दे दूंगा, वो बात नहीं मानी। उसके बाद जब उसने नहीं मानी तो पहले दाम या तो दंड, पैसों से लोगों को ललचाते हैं, फिर धमकियों से, तो उनको धमकी दी, तो धमकी से भी वो बात नहीं माने, तो उन्होंने वरगलाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया इनको। कमरे में बंद किया, एक खूबसूरत लड़की इनके पास भेज दी और खूबसूरत लड़की को कहा तुझे किसी न किसी तरह इसको गुनाह में मुबतला कर देना है। 3 दिन तक एक कमरे में कैद किया, खाने के लिए सुअर का गोश्त रखा, पीने के लिए शराब रख दी। 3 दिन के बाद दरवाज़ा खोला और लड़की से पूछा कि क्या हुआ, क्या किया इस लड़के के साथ। तो वो कहने लगे पता नहीं किस आदमी के पास आपने मुझे भेज दिया था, क्यों, क्या बात हो गई। क्या 3 दिन हो गए इसके रोते वक्त गुजर रहा है, और 3 दिन के बाद मैंने उसको देखा, उसने 3 दिन के बाद मुझे 3 दिन में एक मरतबा निगाह उठाकर अकेले कमरे में मुझे उसने नहीं देखा है। 3 दिन हो गए इसने मुझे आँख उठाकर नहीं देखा है, खाना नहीं खाया इसने, पिया नहीं है, 3 दिन से इसी हाल में गुजारा है। तो बादशाह थक गया उससे और हुक्म दिया कि इसको ख़त्म कर दो, इसको कत्ल कर दो। ये तो बादशाह ने हुक्म दे दिया। ये लड़की जो इसको वरगलाने के लिए कमरे में बंद की गई थी, उस लड़की के दिल में अल्लाह ने बात डाली। क्या बात डाली कि ज़मीन पर ऐसे अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसे अच्छे लोग जिंदा रहने के लायक हैं, ये मार देने के लायक नहीं है, ऐसे अच्छे लोग, ये अल्लाह दिलों को पलटाते हैं। तो बादशाह ये करने वाला था, तो रात को लड़की आई और कहा भैया तेरे जैसे अच्छे लोग इस ज़मीन पर मार दिए जाएँ, तुम इस लायक नहीं हो, कि अच्छे लोग दुनिया में नहीं है, तुम्हारे जैसे अच्छे लोग मार दिए जाएँ तुम इसके लायक नहीं हो। तो क्या करना है कि मैं तेरे साथ तेरी इस अमानतदारी का बदला देने आई हूँ, कि मैं तुझे रास्ता खोल देती हूँ, तो रातों रात यहाँ से निकल जा। और फिर उस ज़माने में लोग सितारों से रास्ता मालूम करते थे, सितारों से, तो ये सितारा है, जब तू चले तो इस सितारे को तू तेरे दाहिने कंधे की तरफ रखना, इस तरफ तू चला गया तो सीधा तू बगदाद पहुँचेगा, आगे जाकर तू बगदाद पहुँचेगा। अगर तू निकल गया तेरे नसीब की बात है, वरना सुबह में तुझे और अपना घोड़ा दिया कि तो घोड़ा लेकर निकल जा। और फिर कहा कि अगर तेरे मुकद्दर में नहीं हुआ तो सुबह पकड़ा जाएगा और तेरा ऑर्डर ये आया है कि इसे मार देना है। वो औरत जो वरगलाने के लिए तय हुई थी, अल्लाह ने उसके दिल को पलटाया और पलटाकर उसके बचाव के असबाब पैदा कर दिए। ये बच्चे को किसने बचाया 3 दिन कमरे में, अल्लाह के डर ने, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरी इस गलती का अंजाम मुझे क्या भुगतना है, उसका इस्तेहजार है। हमारे एक एक बच्चे में इस माहौल में इसका इस्तेहजार हो जाए, ये चीज़ मतलूब है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे बच्चों को पढ़ने के ज़माने में इन चीज़ों का डोज मिलना चाहिए, ताकि इनके अंदर अल्लाह का खौफ रहे, अल्लाह का डर रहे। अल्लाह का खौफ आ जाएगा तो ये 2 चीज़ें करेंगे, अपने अल्लाह के साथ भी अमानतदारी करेंगे और अल्लाह के बंदों के साथ भी अमानतदारी करेंगे। अल्लाह के साथ क्या अमानतदारी करेंगे, कल कोई भी शक्ल सामने आ जाएगी तो ऐसा नहीं कहेंगे हम तो उधर के हवा हो जिधर की, जैसा देश ऐसा भेस नहीं कहेंगे, या फिर कि ये सारी शक्लों के ताबे नहीं हो जाएंगे, अपने आप को अल्लाह के अमर के ताबे रखेंगे। और दूसरा ये होगा कि ये अल्लाह के बंदों के साथ भी खैरखाई करेंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो अल्लाह के बंदों के साथ खैरखा बनेंगे। ये चीज़ पिलाना और ये भरना मतलब है, ये बच्चों को कहाँ से मिलेगी। ये जो फजाइल की किताबें पढ़ी जाने को हमारे स्टूडेंट्स को हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि तुम अपने हॉस्टेलों में रोज़ाना 5-10 मिनट इस किताब को पढ़ो। क्यों पढ़ो, तुम 24 घंटे जिस माहौल में रहते हो उस माहौल में पता नहीं क्या क्या बातें सुनते हो। अगर उस माहौल में 5-10 मिनट अल्लाह रसूल की बात तुम नहीं सुनोगे, अगर बात नहीं सुनी तो फिर ये दिमाग उन चीज़ों से खाली हो जाएगा, अल्लाह रसूल की बातों से खाली हो जाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के माहौल में 5-10 मिनट कम से कम अल्लाह रसूल की बात ज़रूर सुने। तो कैसे सुनेंगे कि जिन हॉस्टलों में बच्चों का क़याम है उन बच्चों से गुजारिश की जाती है वो बच्चे किसी एक नमाज के बाद 5-10 मिनट अल्लाह रसूल के बाद ज़रूर सुने ताकि उन्हें पता चले मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान कैसा हो। वरना तो वो अपने इस्लाम को छुपाता है, मुसलमान जाहिर करने को शर्माता। हम लोग, मैं सब जगह सुना रहा हूँ, हम लोग एक मरतबा विद्यानगर में गए तो एक कॉलेज का स्टूडेंट्स एक प्रोफेसर की मुलाकात में लेकर गया। तो हम लोग जब उसके पास गए रमज़ान के महीने में तो वो प्रोफेसर साहब ने अपनी बेटी को आवाज़ दी, ओ मीना पानी लाओ। हम हैरान हो गए, रमज़ान के महीने में पानी मंगवा रहा है प्रोफेसर। खैर हमने कहा रोज़ा है, तो उसके घर में कहीं पता, पूरी हिंदू कॉलोनी थी तो पता ही नहीं चलता था ये मुसलमान है। तो हमने पूछा कितनी बेटियां हैं, कहा दो। क्या नाम है, कहा मीना है, और दूसरी का कहा दीना है। अच्छा आपने सर, तो प्रोफेसर साहब आपने गैर मुस्लिमों का नाम बच्चियों का रखा है। कहा देखो अमल साहब, हम तो यहाँ गैर मुस्लिम बनकर रहते हैं, क्यों ऐसा करते हो, हमें तो शर्म आती है इस्लाम जाहिर करते हुए, इसलिए हम तो यहाँ अभी गैर मुस्लिम की तरह रहते हैं, जब अपने गांव जाएंगे ना तो हम मुसलमान की तरह रहेंगे। अच्छी बात, तो ये बच्चों का नाम तुमने मीना दिया है ना, मीना को मैंने आमीना रखा है, लेकिन आ निकाल दिया है तो मीना रखा है, जब हम घर जाएंगे तो आमीना कर देंगे और दीना को मदीना कर देंगे। तो ये क्यों ऐसा, ताकि पता ना चले कि मुसलमान है, ऐसा हो कहने लगे। तो तुम ये कह रहे हो तुम वहाँ जाकर ऐसा करोगे बच्चे को, मीना को आमीना, दीना को मदीना, तो मीना आमीना जैसी रहेगी तो आमीना करोगे ना, और दीना मदीना जैसी रहेगी तो मदीना करोगे ना, उससे पहले वो ऐसी हो जाएगी तो क्या करोगे। कि जब माहौल नहीं होता तो इस माहौल में इस दीन के साथ रहना आड़ की चीज़ हो जाती है, शर्म की चीज़ हो जाती है। हमारे बच्चे अपने इस माहौल में इसको शर्म की चीज़ ना समझें, इसके लिए एक बात कही जाती है कि इसका समझाया जाए कि ईमान और इस्लाम कितनी बड़ी चीज़ है। अगर एक बच्चे को सब कुछ मिल गया लेकिन उसके पास से दीन ले लिया गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। मरने के साथ उसके ऊपर जहन्नम की आग जलाई जाएगी और मरने के बाद ये जहन्नम में डाला जाएगा, इतना बड़ा इसके बड़ा नुकसान। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे बच्चे ईमान के एहसास के साथ रहें, अल्लाह के डर के साथ रहें। उसके लिए वो क्या करें कि मुसलमान कैसा होता है और मुसलमान के साथ अल्लाह की मदद क्या होती है, रोज़ ये बच्चे को 10 मिनट ज़रूर सुनाओ। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अपने स्कूल में, हॉस्टल में, जहाँ तुम रहते हो वहाँ 5-10 मिनट की ज़रूर तालीम में बैठो, अपनी तालीम में बैठो। अगर तुम मोहल्ले में रहते हो तो मोहल्ले की मस्जिद की तालीम में 5-10 मिनट इन बातों को ज़रूर सुनो, ताकि हमारा इस्लाम कितना कीमती है, इस मुसलमान कैसा होता है, इस बात को सुनने का सुनकर हमें एहसास पैदा हो और हम अपने सोच को अपने फिक्रों को न बदलें। उसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हमारे बच्चे अल्लाह के रहम व करम में रहने चाहिए। किस में रहने चाहिए बोलो, और अल्लाह के रहम व करम को साथ लेने का जो बड़ा रास्ता है ईमान के बाद वो नमाज है। कौन सी चीज़ है बोलो, नमाज। नमाज इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि नमाज पढ़ते ही बंदा अल्लाह के रहम व करम में आ जाता है। आपने फ़ज़ाइल अमल की किताब में पढ़ा होगा, किताबों में लिखा कि जो आदमी नमाज का अहतमाम करता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है। किसकी जिम्मेदारी में बोलो। अब जिसकी ज़िंदगी से नमाज निकल गई उसका बड़ा नुकसान ये होगा कि वो बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाएगा। ओ हो 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 हो, जो बच्चा अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया अब वो कहाँ जाएगा। नमाज का पढ़ने वाला अल्लाह की जिम्मेदारी में, और नमाज जो ना पढ़े वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाता है। अगर हमारा बच्चा अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल गया पता नहीं तो किसकी जिम्मेदारी में जाएगा। हमारे एक बच्चे की भी नमाज ना जाए उसकी फिक्र दूसरी करनी है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं। इसलिए हमारे बच्चों से गुजारिश की जाती है कि अपने स्कूल के माहौल में हमारे बच्चे नमाज न छोड़ें, नमाज किसी हाल में न छोड़ें। किताबों में आता है जो आदमी बेनमाजी हो जाता है वो बेनमाजी बच्चा शैतान के लिए आसान होता है। बेनमाजी बच्चे से शैतान कोई भी गुनाह करवा देगा, नमाजी आदमी शैतान पर भारी होता है। नमाजी आदमी, किताबों में आता है जो आदमी नमाज छोड़ दे उसने कुफ्र वाला अमल किया, कुफ्र वाला अमल, काफिरों वाला अमल, उसको भी अल्लाह की तरफ सजदा करने को कहते हैं, वो भी नहीं झुकता, और इसको भी कहते हैं ये भी नहीं झुकता, इसका और वो दो सर के अमल कर रहे हैं। इतना बुरा अमल हमारे से हो जाए तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हमारा कोई बच्चा काफिरों वाला अमल ना करे, हमारा कोई बच्चा शैतान के लिए हल्का ना बने। इसके लिए वो क्या करे, नमाजों का अहतमाम करे। इसलिए आप बच्चे माशाल्लाह अहतमाम से नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि अगर इसमें सुस्ती है तो ये सुस्ती ना रहे, हमारी नमाज हर हाल में अपने स्कूल में हो, अगर हॉस्टल में है या स्कूल में है अपनी नमाज हो, और अपनी नमाज कोशिश करो जमात के साथ पढ़ो। क्यों, कि जमात के साथ पढ़ने का नफा ये होगा कि आप तो माशाल्लाह अच्छे माहौल के बच्चे हो, कि आपको तबलीग का माहौल मिला है, मुसलमानों के मोहल्ले मिले हैं, आपके स्कूल में ऐसे मुसलमान बच्चे पढ़ते होंगे कि जिनके वहाँ इन चीज़ों का माहौल ही नहीं है, वो इन चीज़ों को जानते ही नहीं है,
पता नहीं कब वो नमाज पढ़ते होंगे, पता नहीं कब पढ़ते हैं कब नहीं पढ़ते हैं। जब तुम इज्तिमाई में नमाज पढ़ोगे ना, इन बच्चों को भी नमाज पढ़ने की हिम्मत आ जाएगी और वो आपके साथ इज्तिमाई तौर पर नमाज में आएंगे, ये भी महफूज हो जाएंगे, ये भी संभल जाएंगे, और कोई भी मुसलमान बच्चा ज़ाय हो जाए इस पर हम राजी नहीं हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, हम उनके लिए वही चीज़ पसंद करेंगे जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम जैसे अपने लिए पसंद करते हैं उनके लिए भी पसंद करेंगे। अगर वो नमाज में अपनी ज़ात से नहीं आते तो उनको नमाज में लाने की हम कोशिश करें, हमारी नमाज स्कूल के माहौल में ना जाए। इसलिए एक तो नमाज भी पढ़नी है, इज्तिमाई नमाज पढ़नी है, और तीसरे काम जो हमें स्कूल के माहौल में करना है वो क्या करना है, तीसरा काम स्कूल के माहौल में करना है वो ये करना है कि जिस तरह आपने ये भलाई की बातें सुनी हैं समझी है, हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ये बातें नहीं समझी है, उनके न समझने के नतीजे में वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, किसी तरह समझा कर इनको इस गुनाहों से और लायाने से बचाने की मेहनत करनी है, क्योंकि वो मेरा भाई है। बेचारा अगर वो इसी तरह मुब्तला रहा इन चीज़ों में, ये बेचारा ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसकी दुनिया भी ख़राब हो जाएगी, आखिरत भी ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ज़िम्मे है, हमारे नबी सल्लम ने फरमाया तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। तो हम अपने लिए अच्छा ही पसंद करते हैं तो उसके लिए भी पसंद करें, तो उसके लिए पसंद करने में हम क्या करें, क्या हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कोशिश करो कि रोज़ एक मुसलमान भाई की मुलाकात करो। कितने मुसलमान भाइयों की बोलो, रोज़ कम से कम एक मुसलमान भाई की मुलाकात करो। कैसे मुलाकात करो, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं 10 मिनट उनके लिए फारिग करो अपनी ज़िंदगी में से। कितने मिनट बोलो, 10 मिनट। कैसे फारिग करो, हर क्लास के बच्चे को, 11वीं वाले को बताएं मेरी क्लास में कौन मुसलमान है, 12वीं वाले को बताएं मेरी क्लास में कौन मुसलमान है, कॉलेज वाले को बताएं मेरी क्लास में कौन मुसलमान है, उसको टारगेट बनाओ। टारगेट बनाकर ये मेरा मुसलमान भाई है, ऐसे गमड़े का है। अब सुबह में हम लोग यहाँ बैठे थे, आपके जोनों की जमातों की कर्जदारी हमने सुनी, उसमें कर्जदारी में आया कितने मुसलमान इस देहातों में ऐसे बसते हैं कि जो देहात ऐसे हैं जिन देहातों में न मस्जिद है न मदरसा है, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब हमारे वहाँ अभी मगरिब का वक्त हो गया, 50 जगह से अजान की आवाज़ आएगी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन देहातों के बच्चे जिसमें ना अजान होती है, न मुसलमान है, न मस्जिद है, न मदरसा है, उसमें सारे घंटी रोज सुनते हैं बच्चे, सारी चीज़ें रोज सुनते हैं, ये अल्लाह रसूल की बात कब सुनते हैं। अजान भी उस गांव में नहीं होती। मेरे एक चचाजाद बहन एक गामड़े में रहती है, मैंने उसको कहा बहन तुम्हारे गामड़े में तो मस्जिद नहीं है तो तुम अजान कब सुनते हो, तो कहने लगे जब हम गोधरा आते हैं तब सुनते हैं। मैंने कहा गोधरा तुम 6 महीने बाद आते हो तो कम 6 महीने के बाद अजान सुनते हैं, और अगर 1 साल के बाद आते हैं तो 1 साल के बाद हम अजान सुनते हैं। अभी एक जमात ने कर्जदारी सुनाई, हम लोग वहाँ थे शायद मांगरोल या कहीं और कहीं थे, तो एक जमात पैदल चलते चलते एक जगह ठहर गई तो वहाँ अजान पड़ी, तो जो खेमा डाले हुए कच्चे लोग थे, कच्चे लोग और खाना बदोश, वो जो घेटे बकरे लेकर निकलते हैं वो, और उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी ना तो अपने बच्चों को तैयार करके भेज दिया। फिर उसके बाद वो औरतों ने कहलवाया भैया जब तक तुम यहाँ रहो जोर से अजान पढ़ना, हमने बड़े ज़माने के बाद अजान सुनी है। क्या कहने लगी, हमने बड़े ज़माने के बाद अजान सुनी है। ये बच्चे हाथ से ज़ाय हो जाते हैं, ऐसे गामड़ों के बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे गामड़ों के बच्चे, इनके वहाँ अजान भी नहीं होती, कोई इनकी खैरियत पूछने वाला भी नहीं, उन गामड़ों में जमात भी नहीं जाती है। हमें अल्लाह ने ये सारी चीज़ों वाला बनाया है, हमारे जिम्मे हम इनकी फिक्र करें। अगर हमने फिक्र नहीं की तो ये हुजूर का उम्मत ज़ाय और बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए 10 मिनट फारिग करो। कब फारिग करो, आपके पास तो टाइम नहीं होगा, तो आप स्कूल शुरू होने से 10 मिनट पहले चले जाओ, उसको ढूंढ लो वो है कि नहीं, वरना रिसेस में जो रिसेस होती है उसमें 10 मिनट, या छुट्टी के बाद 10 मिनट। वो अगर बच्चा कुछ अच्छे माहौल का है, कुछ समझता है, तो उससे आगे की बात करो। वो बच्चा अगर न्यू से बिल्कुल क्लीन स्लेट है, कुछ भी नहीं जानता, वो बच्चे को पहले दिन तुम ऐसी बात करोगे तो उसको सारी बातें समझ में नहीं आएगी, तो उससे दोस्ती करो, दोस्ती उससे दोस्ती करो। ये हमारा दोस्त बन जाना चाहिए, ये हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, कलमे वाला है। तो दोस्ती करने के लिए उसको चाय पिलाओ, अपने जेब के 5-10 रुपये उसके ऊपर खर्चा कर डालो। लोग इनको खरीदने के लिए 1000 रुपये लगा रहे हैं, लोग इनको अपने अपने पास ले जाने के लिए पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं। वो बेचारा ईमान वाला ईमान पर बच जाए, उसके लिए मेरे 2-5 रुपये लग जाएंगे, लेकिन ये जिंदगी भर बच जाएगा, ये ज़ाय और बर्बाद होने से बच जाएगा, ज़ाय और बर्बाद होने से बच जाएगा। हाँ, अभी मुझे पारोल का एक स्टूडेंट्स मिला कि हमारे वहाँ की बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने वाली क्या रमज़ान के महीने में सहरी करने जा रही है, और उनके दोस्त गैर मुस्लिम बच्चे हो गए, गैर मुस्लिम बच्चे इनके दोस्त हो गए। तो हमने उस लड़के से कहा कि बहन तू सहरी के वक्त में ऐसों के साथ हो जा रही है, तो हमने कहा कि तुम बेटा भाई बहन तू इस तरह जा रही है, गैर मुस्लिम को उठाकर अपने साथ सहरी में लेकर जा रही है। तो कहने लगे ये मेरी निजी ज़िंदगी है, तुम इसमें क्यों मुझे पूछते हो, ये मेरी प्राइवेट ज़िंदगी है, मैं जैसा भी करूँ मैं आज़ाद हूँ। अब उनके माँ बाप या कोई देखने वाले नहीं है, उनके कोई या खैरियत पूछने वाला नहीं है। अगर इसी की जगह पर सगी मेरी बहन होती तो मेरा दिल क्या कहता, इसकी जगह पर सगा मेरा भाई होता तो क्या वो इस हरकत पर मैं राजी हो जाता,
کہ ہمیں اپنے سگے بھائی اپنے سگے بہن پر راضی نہیں ہوتا، یہ بھی میرے بھائی بہن ہیں، یہ ضائع ہو ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ابو فرماتے ہیں 10 منٹ تم فارغ کرو، ان بچوں سے دوستی کرو، تمہاری 10 منٹ کی دوستی ان کی زندگی بدل دے گی، ان کو سنبھال دے گی۔ ہاں، ان سے دوستی کر کے ان کے اوپر اپنا 2-4 روپے 5 روپے 10 روپے کا ناشتہ ان کو کروا، جب وہ تمہارا دوست بن جائے گا تم جو بات کہو گے وہ بات پر وہ آ جائے گا۔ ہمیں کیا بات کرنی ہے؟ اس کو پیار محبت سے دوست بنا کر اس کو نماز والا بنا دینا ہے، پیار محبت سے اس کو دوست بنا کر اگر وہ آباد ایسے شہروں کا ہے جہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس کو کچھ اس عمل کی طرف اس کو متوجہ کر دینا ہے، اگر وہاں ایسے ماحول میں نہیں ہے تو اپنے وہاں ہر ہفتے پروگرام ہوتا ہے، ہفتہ واری اجتماع، جیسے تاندل جامع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اکثر اسٹوڈنٹ ناگر واڑا میں ہر جمعرات کو ہوتا ہے، تو ہمارے بچوں کو پیار محبت سے اس میں آنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس میں آ گئے تو مہینے میں ہفتے میں ایک مرتبہ اس کے کانوں پر اللہ رسول کی بات تو پڑے گی، پورے ہفتے میں اس کے کانوں پر اللہ رسول کی بات نہیں پڑے گی، وہ ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ کم سے کم اگر اٹھوڑیا میں ایک مرتبہ یہ بچہ آئے نا تو ان کے کانوں پر اللہ رسول کی بات پڑے گی، اور اللہ رسول کی بات یہاں سے لے کر، ابھی ہم لوگ سفر میں تھے تو ایک کچھ میں ہم کو ایک بچہ ملا، ڈاکٹر ملا، وہ ڈاکٹر کہنے لگا مولوی صاحب میں اب مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہ میں گودرا میں پڑھا ہوں، میں بھی گودرا کا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں شامڑا جی میں گودرا میں پڑھتا تھا، تو میرا گھر میں تو ساری خرافات ہے، بدعت ہے، اور ہم پتہ نہیں کن کن گناہوں میں ہیں، لیکن میں اسکول میں جب وہاں پڑھنے آیا تو ہمارے اسکول کے بچوں نے مجھ سے دوستی کی، دوستی کر کے مجھے انہوں نے اپنے گھر دعوت دی اور یہ کیا، جب دوستی پکی ہو گئی تو وہ مجھے مرکز پر لے کر آئے، تو مرکز پر میں نے دیکھا ماشاءاللہ 1000 کا مجمع ہے اور اس میں اللہ رسول کی بات ہوئی، مجھے بہت اچھی لگی۔ میں تو ایسا سمجھتا تھا کہ یہ لوگ تو اللہ کو نہیں، رسول کو نہیں مانتے، فلوں کو نہیں مانتے، اور یہ تو ساری باتیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہم بیان ہو گئے تو یہ گھر سے ٹیفن لے کر آیا تھا، مجھے کھانا کھلایا تو مجھے تو بہت اچھا کھانا لگنے لگا، ہر ہفتے اس نے مجھے کھانا کھلایا، لیکن اس نے تھوڑے دن مجھے کھانا کھلایا لیکن میری وچار دھارا اس نے بدل دی، میری سوچ بدل دی، اب میرے گھر میں اکیلا ہوں جو اس فکروں پر ہوں۔ پھر میں نے ان کو پوچھا ابھی کیا حال ہے؟ کہ مولانا وہاں جو میں کرتا تھا اب میرا سب چھوٹ گیا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اس لیے وہاں مجھے، یہاں مجھے ماحول نہیں ملا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، شیر جو ہوتا ہے نا وہ جنگل میں چلا جائے تو بھی شکار کرتا ہے، اور شہر میں آ جائے تو بھی، شیر اپنی فطرت نہیں، تم اتنے کیسے پودے ہو گئے تم بدل گئے؟ تو اس نے کہا نہیں میں چلو آج سے نیت کرتا ہوں۔ دوسرا دن ہوا، 4 ڈاکٹروں کو لے کر آئے، کتنے ڈاکٹروں کو؟ اور کمل صاحب یہ 4 ڈاکٹر ہے، اور یہ اس کے بعد اس نے کہا یہ MD فلاں فلاں چیز میں MD ہے، ہمارے کچھ بھوج میں یہ پہلا مسلمان اس سطح کا MD ہے۔ اچھا تو تم کیسے لے آئے؟ کہ آپ نے کل مجھے تھوڑی بات کی تھی، میرے دوست یہ تھے، میرے دل میں آیا کہ ان سب کو لے کر جاؤں۔ ایک دن تھوڑی سی بات ہوتی ہے اتنی فکریں جاگرت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ان بچوں کو اگر آپ نے پیار محبت سے ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی بات کر لی اور ان کا اکرام کھڑا کر لیا، ان کو کھلا لیا پلا لیا، تو تمہارا تو تھوڑا کھانا ان پر لگے گا، لیکن تم ان کی کھیپ کی کھیپ ضائع اور برباد ہونے سے بچا لوگے۔ اس لیے آپ کو چوتھا کام جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے بچوں کو اپنے مسجد کے ماحول میں ان کو جڑے، تعلیم میں، گشتوں میں جتنا ہو سکے اتنا جوڑنے کی ان کو ترغیب دینی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں یہ آئیں اس کی تھوڑی ان کی فکر کرنی ہے تاکہ یہ بچے ضائع اور برباد ہونے سے بچ جائیں۔ اور آخری کام کیا کرنا ہے؟ آخری پانچواں کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمارے ان بچوں کے چھٹیوں کے دن آج کل بہت بچے پروگرام بنا کر ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ دہلی جا رہے تھے چھٹیوں کے دنوں میں، تو ہمارا پورے ڈبہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے بھرے ہوئے تھا، راجستھانی بچے تھے، وہ پتہ نہیں کہیں سے بیٹھے تھے، ہم دلی جا رہے تھے، اس میں بہت سارا مجمع، اس میں مسلمان بھی تھے۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ اتنے سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بچے گھومنے جا رہی ہے، مسلمان بچہ گھومنے جا رہا ہے، یہ اتنوں کے درمیان میں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے دیکھا ہم تو سارے عمل کرتے ہوئے جا رہے تھے لیکن اس میں مسلمان بھی، اور سب ایک ہی دیش میں ایک ہی بھیس میں رنگے ہوئے جا رہے تھے، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، اللہ ہی ان کا حافظ ہو۔ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ پروگرام بنا لیتے ہیں، یہ چھٹیاں گناہوں میں مبتلا ہونے کی چیزیں ہو گئی۔ ابھی ایک 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 گروپ میں نے دیکھا وہ گوا گیا، لڑکے لڑکیوں کا ساتھ میں گروپ۔ اب جب کتابوں میں آتا ہے جہاں ایک لڑکا اور لڑکی دو جمع ہو جاتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، ہاں شیطان، کتابوں میں آتا ہے سگا بھائی اور سگی بہن بھی ایک ساتھ اکیلے تنہائی میں نہ رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے تھے، تو ایک صحابی بازار خریدی کرنے جا رہے تھے، واپسی میں دیکھا کہ وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، تو پوچھا حضرت عمر سے کہ اب اپنے دروازے کی چوکھٹ پر میں گیا تب سے بیٹھا ہوں، کیوں کیا بات ہو گئی؟ تو کہنے لگے میرے گھر میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے، حضرت افسہ حضور کی بیوی ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے گھر میں میری بیٹی آئی ہے، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں رہوں۔ باپ اور بیٹی، اور وہ بھی کون؟ حضرت عمر، اور بیٹی کون؟ حضرت افسہ حضور کی بیوی، کیا کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت عمر نے فرمایا میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تنہائی میں رہوں۔ ہماری یہ کھیپ کی کھیپ ان ماحول میں چلی جاتی ہے، ہم اس سے پہلے ان کو کور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چھٹیوں کا دن ان کے وقت لگوانے کا اچھا وقت ہوتا ہے، جن کے پاس چلوں کا جیسے جو چھٹیاں ان کو چلوں میں لے جاؤ، جن کے پاس چلوں کی چھٹیاں نہ ہو خود عشرے میں جاؤ، ان سب کو عشرے کی تشکیل کرو، और जिनके पास जितना वक्त हो इसको इनको जमातों में ले जाओ ताकि इनका ये वक्त जाए और बर्बाद होने से बच जाए। अगर ये मोटे मोटे अमल आपने पढ़ाई के ज़माने में कर लिए ना तो हमारे ये खेप बच जाएगी, और इंशाल्लाह ये खेप जब बड़ी बनेगी ना तो अच्छी बड़ी बनेगी। कैसी बड़ी बनेगी बोलो? अच्छी बड़ी बनेगी। अल्लाह आपको भी संभाल लेगा, आप किसी के सर पर हाथ रखोगे ना तो अल्लाह आपके सरों पर भी हाथ रखने वाले पैदा कर देंगे, क्योंकि किताबों में आता है अल्लाह भलाई का बदला भलाई से देते हैं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। कोई किसी के सर पर हाथ रखता है, अल्लाह भी उसके सर पर हाथ रखने, अल्लाह ज़ाया नहीं करता किसी के, तो अल्लाह आपको भी देगा और आपकी कल नस्ल होने वाली है। अगर आपने आज किसी के औलाद की हमदर्दी की ना, अल्लाह कल हमारी और आपकी औलाद की भी हमदर्दी करने वाले लोग पैदा कर देंगे। इसलिए सब ये करो कि इंशाल्लाह हम भी ज़ाया होने से बचेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी खेप को ज़ाया होने से बचाने की हम मेहनत करेंगे। नियत करता है। और आखिरी बात यह है, हमारे बच्चों की इन सारे अमल के साथ पढ़ाई मजबूत से मजबूत हो उसकी फिक्र हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी हो बोलो? मजबूत से मजबूत। ये हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने गए हैं, अगर ये अच्छे बने तो उम्मत के लिए अच्छे हमदर्द बनेंगे, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे उस्ताद, अच्छे लॉयर, अच्छे से अच्छे बने। उसके लिए हमारे बच्चों की स्कूल में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए बोलो? अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो। इसलिए हम अपने साथियों की निगरानी करें। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा ये साथी पढ़ाई में सुस्ती कर रहा है, हमारा ये साथी पढ़ाई में कमजोर बन रहा है, हम उसको लेकर बैठे, दो दोस्त मिलकर बैठे, प्यार मोहब्बत से उससे बात करें, भैया हमारे स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, आप माशाल्लाह इतने अच्छे ज़हीन हो, इतने अच्छे घर के बच्चे हो, आपकी पढ़ाई में सुस्ती हो रही है, आप पढ़ाई में ये कर रहे हो, ऐसा ना करो। देखो ये वक्त तो गुजर जाएगा, अगर आपने अच्छा नहीं गुजारा ना तो भी गुजर जाएगा, लेकिन दो चीज़ें नुकसान में होगी। आपका ज़ाती नुकसान ये होगा कि आप अच्छे नतीजे पर नहीं पहुँचोगे, एक। दूसरा, आपके माँ बाप आपको फीस भेजते हैं, आज फीस देखो कितनी भारी हो गई, कितनी भारी फीस हो गई। फ्री का एजुकेशन था लेकिन अब फ्री फीस से हो रहा है, इतनी फीस। आप अपने माँ बाप को सोचो, आपके माँ बाप आपको कहाँ से पैसे भेजते हैं। हर बच्चा सोचे कि मेरे माँ बाप फीस के पैसे कहाँ से भेजते हैं। कितनों के माँ बाप मजदूरी करते हैं, माएँ बर्तन मांजती है, माँ पेट काट काट कर फीस के पैसे जमा करके बच्चों के लिए जमा करवाते हैं। उन बच्चों को इसकी गैरत दिलाओ कि भाई तेरी अम्मी अब्बा तुम्हें कहाँ से पैसे भेजते हैं, तुम्हारे अम्मी अब्बा इतनी मेहनत से तुम्हें पैसे भेज रहे हैं, तुम्हारी फीस भर रहे हैं और तुम खेलते कूदते वक्त गुजार लोगे, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के साथ भी ख्याल रखे, और अगर इसी हाल में तुम परवान चढ़े और पढ़ाई तुम्हारी कच्ची हो गई तो तुम समाज के लिए भी ठीक नहीं बनोगे। इसलिए हमारा एक भी साथी की पढ़ाई कमज़ोर हो इसकी हमें फिक्र करना। हम भी मदरसे में पढ़े, हमें पता है कि माँ बाप कैसे पैसे भेजते हैं। हम बच्चों के हालात देखते थे, सुनते थे। अभी हमने देखा एक बच्चा MBBS बना, उसका अब्बा ST का ड्राइवर था। ST जब उसका एडमिशन लेना था ना तो उसने कर्जा लिया, कर्जा, और रात दिन नाइट ड्यूटी कर करके उसके कर्जे को अदा किया उसके बाप ने। हाँ, एक बच्चा था तो उसकी माँ बर्तन मांजती थी, बर्तन घर घर जाकर बर्तन मांजती थी और पैसे जमा करके बच्चे को पढ़ाया है। अब इतनी मेहनत करके बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप मजदूरी करके भेजे और उसका उसके बेटे को इसका एहसास भी ना और सैर सपाटे करें तो ये ठीक नहीं होता। एक एक बच्चे को लें, कोई भी बच्चा स्कूल में हमारा पढ़ाई में कमज़ोर हो, हम इस पर राजी नहीं है कि वो कमज़ोर पढ़ाई पढ़ाए। हम उसको कहें कि नहीं भाई, उसका जहन बनाकर वो अच्छे से अच्छा पढ़े, उसकी फिक्र हम करेंगे। तो एक तो उसके दीन की फिक्र और उसकी पढ़ाई की भी फिक्र, तो इंशाल्लाह तुम भी अच्छे बन जाओगे और तुम्हारे जरिए से अच्छी खेप हजारों की तैयार हो जाएगी। करोगे इसकी फिक्र? जो बच्चे स्कूल में हॉस्टल में नहीं रहते हैं वो क्या करेंगे? वो अपने स्कूल के टाइम के बाद अपनी मस्जिद में, जो मोहल्ले में मस्जिद और जमात है उसमें जोड़ो, उनके मशवरे में, उनके गश्तों में, उनकी मुलाकातों में, ताकि तुम्हारा ताल्लुक मस्जिद से बाकी रहे। अपने मोहल्लों के स्टूडेंट्स में तुम्हारी मेहनत हो ताकि तुम्हारा ताल्लुक मस्जिद और आमाले मस्जिद से बाकी रहे। करोगे इसकी फिक्र इंशाल्लाह? और महीने में अगर तुम्हारे 3 दिन की छुट्टी हो तो 3 दिन जाओ, 3 दिन की छुट्टी नहीं 2 दिन की छुट्टी है 2 दिन जाओ, 2 दिन की भी तुम्हारी छुट्टी नहीं 24 घंटे की सैटरडे संडे को छुट्टी है तो इतना तुम जमात में चले जाओ ताकि तुम्हें थोड़ा सा चार्जिंग हो जाए और तुम्हें थोड़ा डोज मिलता रहे। तो महीने में 3 दिन की छुट्टी हो 3 दिन जाओ, नहीं है 2 दिन की छुट्टी है 2 दिन जाओ, 2 दिन की भी छुट्टी नहीं है तो कम से कम 24 घंटे 24 घंटे जाओ, तो तुम संभले रहोगे। भाई गर्म पानी है उसको गर्म बाकी रखना हो तो उसको थर्मस में भर लो, गर्म रहेगा, और अगर बाहर आ गया ना तो कितना भी गर्म हो ठंडा हो जाएगा, बर्फ है वो बाहर पिघल जाएगा। बाकी रखना है उसको ठंडा रखने वाली चीज़ में रख दो, महफूज हो जाएगा वरना पिघल जाएगा। आप इस माहौल में संभले रहोगे, अगर ये माहौल नहीं मिला तुम जाए हो जाओगे। इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह हम करेंगे और पढ़ाई पूरी हो जाए तो अपनी पढ़ाई के बाद हम 4-4 महीने लगाएं, 4-4 महीने लगाकर उसके बाद क्या करें, अपने जॉब सर्विस पर जाओ ताकि तुम अमानतदार, ईमानदार, अच्छे पक्के भले बन जाओ, तुम्हारी लाइनों में तुम्हारी खयानत तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए। इसलिए सब की ये नियत हो जाए कि इंशाल्लाह हम पढ़ाई के बाद 4-4 महीने जरूर जाएंगे। जाओगे किस साल किसके किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है माशाल्लाह, आप सब नियत करते हो कि हम 4-4 महीने जाएंगे, अच्छी बात। अच्छा एक बात रह गई, ये बात आपको गुज़िश्ता साल भी समझाई थी, बोलो समझाई थी, तो आप स्कूलों में आपने इन सब चीज़ों को शुरू कर दिया भाई? भाई ये सारी चीज़ें जो गुज़िश्ता आपको भी समझाई थी अभी भी समझाई है, तो आपने इसको इज्तिमाई नमाज है, मुलाकातें हैं, तालीम है, और गश्तों में जाना है, हफ्तावार इज्तिमा में जाना, ये सब चीज़ें आपने शुरू कर दी है। किसी स्कूल वाले ने शुरू किया हो तो ज़रा बताओ खड़े होकर, किसी स्कूल में ये सब चीज़ें शुरू हुई हो तो खड़े होकर ज़रा बताओ, बताओ बताओ।